हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ज़ोया ने अबीर से स्पष्ट कहा था, अबीर साहब, जो भी आपने मेरे साथ किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। और रही बात मेरे इस जिस्म की, तो अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप मेरे साथ जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। ज़ोया ये सारी बातें एकदम सपाट चेहरे से कही थी। अबीर ने जैसे ही ज़ोया के मुंह से ये सब सुना, उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। अबीर को बहुत बुरा लग रहा था और वो ज़ोया को गहरी गहरी नज़रों से देखने लगा था। अबीर सिंह राठौर अपने आप को रोक नहीं पाया और वो ज़ोया से शिकायती लहजे में बोला, तुम बीवी हो मेरी और तुम्हारे जिस्म को लेकर मेरे अंदर इतनी भी आग नहीं है कि मैं अपनी बीवी की हल्की बीमारी भी न देखूं, समझी तुम? और रही बात मेरे दो दिन पहले किए गए अपराध की, तो मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ज़ोया, तुम भी मेरी बात अच्छे से समझती हो, उस वक्त जो भी मुझे हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में हुआ। मैं वादा करता हूँ मैं आगे से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो, मेरी जान हो, समझी? जैसे ही अबीर ने ये सब कहा, ज़ोया उसे गहरी नज़रों से देखने लगी और बोली, मिस्टर राठौर, मैंने आपसे कहा ना, आपको किसी भी तरह की कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और जब एक बार मैं ठीक हो जाऊंगी तब आप मेरे इस जिस्म के साथ खेलवाड़ कर सकते हैं। और आज तक लोग यही तो करते आए हैं मेरे साथ, जिसने जब चाहा मेरे साथ खेल लिया और जब चाहा मुझे छोड़ दिया। अब तक मैं आपके जैसे कितने ही मर्दों को देख चुकी हूँ, जो दोस्ती के नाम पर, प्यार के नाम पर मुझे धोखा दे चुके हैं, मेरे इस जिस्म को रौंद चुके हैं। और आप जानते हैं, मैं आपसे कोई खास उम्मीदें नहीं लगा रखी हैं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो भी किस लिए? मेरे जिस्म के लिए ना। सो, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद आप अपनी मोहब्बत पा सकते हैं। आखिर मोहब्बत का नाम इस जिस्म से शुरू और इसी पर खत्म होता है ना? तभी तो मोहब्बत पूरी होती है, जब एक दूसरे के जिस्म को पा लेते हैं। यही है ना आप लोगों की नजरों में मोहब्बत की हैसियत? ज़ोया के मुंह से ऐसी बात सुनकर अबीर सिंह राठौड़ का खून जलने लगा था और वो खुद को रोक नहीं पाया और वो एक झटके से खड़ा हुआ और उसने ज़ोया के बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़ लिया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत तुम्हारे इस जिस्म को पाने के लिए कर रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर लगती है? क्या तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचती हो? हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू थिंक सो बैड ऑफ मी? मैं ऐसा लगता हूँ क्या? तुमने अभी तक मेरे बारे में केवल इतना ही जाना है, आखिर क्यों तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी ये बातें मेरा दिल दुखा रही हैं, जानती भी हो तुम? मैं अबीर सिंह राठौड़ हूँ, मेरे पास लड़कियाँ अपने आप को थोपने के लिए मर जाती हैं। एक से बढ़कर एक लड़कियों को मैंने रिजेक्ट किया है। मैं आज तक कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, किसी को मैंने हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकती हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और रही बात तुम्हारे जिस्म की, तो मैं आज अबीर सिंह राठौड़ तुम्हें वचन देता हूँ, जब तक कि तुम खुद चलकर मेरे पास नहीं आओगी, मैं तुम्हें छूना तो दूर की बात, तुम्हारी ओर उस नज़र से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, ये वादा है मेरा। ऐसा कहकर अबीर ने ज़ोया के बालों को झटके से छोड़ दिया और अचानक ज़ोया का सिर बेड के सिराहाने से जा लगा था। अचानक सिर लगने से ज़ोया को चोट लगी थी, ज़ोया दर्द से कराह उठी थी। अबीर राठौड़ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने ज़ोया के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर दी थी, इसीलिए उसने ज़ोया के सर को सहलाया और तकिया लगाकर अच्छी तरह से उसे कम्फर्टेबल बिठाकर वो उसे एक नज़र डालता हुआ उसके कमरे से निकल गया था, क्योंकि ज़ोया की नफरत वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और आज ज़ोया ने उसे जो कुछ भी कहा था, उसकी बातें सीधा उसके ज़मीर पर लगी थीं। ज़ोया अबीर राठौड़ को तब तक देखती रही थी जब तक कि वो उसके कमरे से बाहर नहीं निकल गया था। उसके बाद ज़ोया ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेने लगी थी। ज़ोया के दिलो दिमाग में एक तूफान सा उठा हुआ था, लेकिन उसने अपने दिलो दिमाग की बातों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। वो एक सपाट चेहरे लिए बैठी हुई थी, उसके चेहरे को देखकर कोई उसके अंदर चल रहे तूफानों का पता नहीं लगा सकता था। वहीं एक अंधेरे कमरे में अरमान ठाकुर अपनी टांग के ऊपर टांग रखे हुए एक इमोशंस भरे चेहरे के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उसको ये बात पता चल चुकी थी कि उसके भाई अरहम ठाकुर ने उसकी मोहब्बत के लिए अकरम और रिया के सामने हाथ जोड़े थे और बदले में अकरम ने अरहम के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया था। अरमान ठाकुर ने अपने दो आदमी अबीर राठौड़ के घर में तैनात कर रखे थे, जो उसे पल पल की खबर दे रहे थे, क्योंकि अब अरमान ठाकुर जल्द से जल्द इंडिया वापस जाने वाला था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी जोया के बारे में जानने की, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाया था। लेकिन हाँ, उसकी इस कोशिश से ये बात सामने आ चुकी थी कि उसका भाई अब उसके लिए वफादार बन चुका है, उसका भाई उसे अब कभी धोखा नहीं देगा। ये बात अरमान को काफी राहत पहुँचा रही थी, लेकिन अकरम का उसके भाई पर इस तरह से हाथ उठाना अरमान के अहम को ठेस पहुँचा चुका था। अरमान ने अकरम को ट्रैक करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। अपने भाई का अपने लिए कंसर्न देखकर अरमान ठाकुर अब इस चीज से बेफिक्र हो चुका था कि उसका भाई उसे धोखा देगा। उसे पूरा यकीन था जैसे ही जोया उसके भाई को मिलेगी, वो जोया को अरमान के पास पहुंचाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब साफ था, अरमान अब खुशी खुशी भारत वापस जा सकता था। उसके मन पर अब किसी तरह का कोई बोझ नहीं था। और वैसे भी अगर जोया उसके भाई को मिलती है, ठीक है, अगर उसके भाई को नहीं मिली तो उसने जो अपनी एक सीक्रेट टीम वहां तैयार की थी तो उसे तो वो जरूर मिल ही जाएगी। बस यही सोचकर अरमान अब बेफिक्र होकर बैठा हुआ था। लेकिन भारत जाने से पहले वो अकरम को सबक जरूर सिखाना चाहता था, इसीलिए उसने अकरम से मीटिंग करने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। अरमान ने अपने आदमियों के हाथों अकरम के लिए बुलावा भेजा था कि अरमान ठाकुर अकरम से मिलना चाहता है, लेकिन अकरम ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि अकरम अरमान से रिया की किडनैपिंग को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जो पहले अरहम और अरहम ने रिया के साथ किया था वो भी वो नहीं भूला था, लेकिन अबीर सिंह राठौड़ और अकरम ने उन लोगों को सजा देने के लिए कुछ अलग ही प्लान बना रखे थे, तो इसके लिए उन्हें अभी सिर्फ जोया के बिल्कुल ठीक होने का इंतजार करना था। जब एक बार अरमान का आदमी अकरम के पास उसका बुलावा लेकर आया तो इस बार अकरम उसे इनकार नहीं कर पाया। वो अरमान से मिलकर उसके मन की बात जानना चाहता था। फिर क्या रीजन था कि अरमान बार बार उससे मिलने की जिद कर रहा था? तो जल्द ही उन दोनों ने डिसाइड करके एक जगह तय कर ली थी कि कितने बजे हम लोग वहां मिलेंगे। जैसे ही अरमान को ये पता चला कि अकरम ने उसका ऑफर कबूल कर लिया है मिलने का, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई थी।
वहीं दूसरी ओर रात के समय मेहर एक छोटी सी नाइट ड्रेस में बेड पर लेटी हुई थी और उसे रह रहकर राजवीर का ख्याल आ रहा था, क्योंकि 7 दिन हो चुके थे लेकिन अभी तक राजवीर का कहीं कुछ भी पता नहीं लग पाया था। मेहर को राजवीर की पल पल याद आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार करती थी, वो अभी राजवीर को और दर्द देना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि राजवीर इतनी आसानी से उसके चंगुल से छूट जाएगा। मेहर अभी राजवीर के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। मेहर का बेड से उठने का मन नहीं था। उसने लेटे लेटे ही उदासी भरे मन से कहा, अंदर आ जाओ। वो सोच रही थी कि जरूर उसकी मुलाजिमा उसके लिए दूध का ग्लास लेकर आई होगी, क्योंकि मेहर को सोने से पहले दूध पीने की आदत थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने ठीक सामने तेजा को खड़े हुए पाया, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने नहीं सोचा था कि तेजा यूं इस तरह से उसके बेडरूम में आ जाएगा। मेहर ने जैसे ही तेजा को देखा, वो एक झटके से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे तो उसे तेजा के सामने अनकंफर्टेबल लगने लगा था। मेहर को इतनी शॉर्ट ड्रेस में देखकर तेजा के मुंह से पानी आना शुरू हो गया था। तब मेहर तेजा को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देख चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे कमरे में आने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो कि क्या हो तुम इस घर में? मेहर को अपने ऊपर इस तरह से चिल्लाता हुआ देख तेजा का सब्र का बांध टूट गया और उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया था और बोला, उस रात के बाद क्या तुम अभी तक मेरी औकात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई हो? उस रात तुम अपने मतलब से मेरे साथ सोई थी, लेकिन आज मेरी ज़रूरत के लिए तुम मेरे साथ सोना होगा। मेरे जिस्म को इस वक्त ज़रूरत है तुम्हारी। ऐसा कहकर तेजा ने ज़बरदस्ती मेहर के होंठ पर अपने होंठ रख दिए थे। तेजा की ये हरकत मेहर को अंदर ही अंदर तपा रही थी और वो तेजा को रोकने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन तेजा उसकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने लगातार मेहर को चूमना शुरू कर दिया था। एक तो मेहर के छोटे कपड़े तेजा को पागल किए जा रहे थे, मेहर की हॉट बॉडी उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तब तेजा ने देरी न करते हुए जल्दी ही मेहर को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था और जल्दी ही दोनों की आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगी थी।